फ्रूट लेके आते हुए मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? ऐसा लगता है आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई हमने तो आपसे वादा किया ही था कि हम आपको टैलेंटेड लोगों से मिलवाते रहेंगे। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं साहिर बाजोवाला जी को, जो कि एक फोटोग्राफर, ब्लॉगर, राइटर एंड पेट्रोकेमिक्स बिजनेस में भी है। और न जाने उन्होंने कितने कितने अवार्ड्स जीते हैं, उनको कॉइन कलेक्शन का भी शौक है। उन्होंने कैमरा प्रो फोटोग्राफर 2016-17 and 2018 में टॉप 10 रैंक में वो आ चुके हैं। कंसिस्टेंटली 3 साल उन्होंने ये अवार्ड जीता है और कॉइन कलेक्शन में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता है। G20 समिट में उन्होंने अवार्ड जीता है। तो बिजनेस रिलेटेड अगर हम बात करें तो बिजनेस आइकॉन अवार्ड, इंस्पिरेशन मैन अवार्ड, न जाने कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। तो उनके साथ बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया कि कैसे उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, क्या किस तरह से वो डेवलप हुई, किस तरह से उनको अवार्ड्स मिले। तो चलिए अब आप उनकी बातचीत सुन लीजिए, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए यहाँ पे।
बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉल में, इस इंटरव्यू में। कैसे हो आप?
मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
नहीं, मैं भी ठीक हूँ। वो माफी चाहते हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से।
नहीं इशू।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक फोटोग्राफर भी है, एक ऑथर भी है और एक बिजनेसमैन भी है, तो एज अ फोटोग्राफर आपने अपनी पहली फोटो कब खींची? पहली फोटो आपकी जो थी वो आपने कब खींची?
पहले से ही बचपन से ही पता नहीं एक फोटोग्राफी का एक तरफ खींचाव था। तो पहली फोटो कब खींची वो तो याद नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में पहले कैमरा हुआ करता था जो बहुत ही पुराना एंटिक कैमरा था, जो ऐसे नीचे देखकर उस पर फोटो आता था, रील वाला फोटोग्राफर। वो हमारे डैडी ने हमको सिखाया था कैसे उसमें पिक्चर्स लिए जाते हैं। और बस घर में सबसे छोटा था इसलिए कैमरा मेरे हाथ में ही रह जाता और मैं ही सबके पिक्चर्स खींच सकता था। बस उसी दौरान हमको धीरे धीरे उसके तरफ लगाव बढ़ता गया और धीरे धीरे डैडी ने एक नया कैमरा दिलाया। उसके बाद में डिजिटल कैमरा आने लगे, तो बस उसी तरह से मैंने अपना फोटोग्राफी का पैशन रखा था। कॉलेज के टाइम में फिर थोड़ा जब बिजनेस स्टार्टिंग हुई तब थोड़ा उसमें टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वापस की तरफ टाइम मिलने लगा और उसके अंदर और ज्यादा हम इन्वेस्ट करने के लगे, तो आगे बढ़ते गए। बस उसमें हम इट इज नॉट माई प्रोफेशन, इट इज जस्ट अ पैशन। उसमें से मैं एक पैसा भी कमा नहीं रहा हूँ, आई जस्ट इन्वेस्ट माई मनी इन टू लेंसेज एंड कैमराज।
तो ये एक आपका पैशन ही है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था पर आपने उसका जवाब पहले से ही दे दिया कि आप अपनी फोटोग्राफी को एक पैशन की तरह देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कंसिस्टेंटली आप कैमरा प्रो ऑर्गेनाइज्ड टॉप फोटोग्राफर 2016-17 and 18 ये तीनों में आप रह चुके हैं, तो आपने वो कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन की? कुछ तो आपने वो रखा होगा आपका गोल कि किस तरह से आपने ये मेंटेन की कि आप टॉप 10 फोटोग्राफर बन चुके हैं 2016-17 and 18 में, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं।
देखिए, मेरी फैमिली, मेरे डैडी, मम्मी, मेरे भाई बहन या मेरी वाइफ, सब लोगों ने मुझे ग्राउंडेड रखा है पहले से। अगर मैं कुछ अवार्ड भी जीत के आता था तो उस वक्त खुशी मनाते थे, लेकिन तुरंत ही कहते कि इससे कुछ होने वाला नहीं, आगे भी करना है कुछ। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बचपन से मुझे सीखने का शौक है, कुछ ना कुछ सीखते रहो। और आज की तारीख में भी मैं एक दिन में कुछ 3 चीज नहीं सीखता हूँ, नॉट अबाउट फोटोग्राफी, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी तीन चीज नहीं सीखो जो आप कभी जानते ही ना हो, लेट इट बी ऑफ कंप्यूटर, लेट इट बी ऑफ बिजनेस, लेकिन कोई चीज नहीं जो ना आपको कभी नहीं जानते हो वो सीखना बहुत जरूरी है और वो मैं सीखता हूँ। तो उसी तरह से फोटोग्राफी में जब पहला अवार्ड मिला तो वो भी सरप्राइजिंग था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फोटोग्राफी में कुछ अवार्ड जीतूंगा। फोटोग्राफ पिक्चर्स लेता था, लोगों को गिफ्ट करता था अपने पिक्चर्स लेकर। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज ऑल्सो, थोड़ा उसको फोटोग्राफी का शौक था, तो उसने मेरे पिक्चर्स देखे और उसने ये मुझे कहा कि एक एग्जीबिशन है उसके अंदर तेरे फोटोग्राफ, हम लोग तू उसमें एग्जीबिशन में पार्ट ले। मैंने बोला कि मैं कोई पार्ट वार्ट नहीं लेना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो बस पिक्चर्स लेऊंगा तेरे को, तेरे भी पिक्चर्स लेऊंगा तेरे को दे दूंगा। लेकिन उसने मेरे पिक्चर्स लेकर मेरे नाम से और उसने पैसे भी भर के इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया मेरे, और सरप्राइजिंगली वो मुझे अवार्ड मिला, दैट वॉज माई फर्स्ट अवार्ड। तो ये अवार्ड मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है, तो उसके ऊपर से फिर मैं और उसमें डेप्थ में उतरता गया। ये नहीं था कि बस मैं अवार्ड जीत गया इसलिए मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, नहीं, आई केप्ट ऑन लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट कैमरास। कैमरास में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमको पता ही नहीं होते हैं, हम कभी यूज ही नहीं करते, तो वो सारे सीखता गया। कैमरास के अलग अलग तरीके, फोटोग्राफ्स के अलग अलग तरीके लेता गया, लाइटनिंग के बारे में सीखता गया, एपर्चर्स और उसके सारी चीजें सीखता गया, उसी तरह से और आगे बढ़ता गया। और आज भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं सब कुछ जानता हूँ, स्टिल आई एम नॉट, लर्निंग इज ऑलवेज ऑन, यू कैन नॉट बी द मास्टर इन एनी टाइम, एट एनी टाइम।
तो बस आप सीखते ही रहे और इसकी वजह से ही आप इतने आगे बढ़ चुके हैं अपनी इस फोटोग्राफी के पेशन में, तो ये बड़ी बात है। और आपने एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता था कॉइन कलेक्शन में, तो जेन्युइनली आपके पास कॉइन कलेक्शन बहुत सारे हो गए, एंटीक हो गए, तो वो कौन से कॉइन कलेक्शन आपके पास है जो, वो हम जानना चाहते हैं।
कॉइन्स और करेंसीज जो होती है उसका एंटीक करंट कॉइन्स है मेरे पास, मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य डायनेस्टी के टाइम के भी कॉइन्स हैं, फिर ब्रिटिश रूलर्स के टाइम के भी कॉइन्स हैं, राजा अकबर के, फिर शाहजहां के टाइम के कॉइन्स हैं, टीपू सुल्तान के कॉइन्स हैं, फिर राजा राणा प्रताप के कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स का तो बहुत, लेकिन वो कॉइन्स मेरे दादाजी ने मेरे डैडी को गिफ्ट किए थे और मेरे डैडी ने मुझे करे थे और मैंने उसको एक्सपांड किया। जैसे अगर कोई कॉइन डबल है मेरे पास और मुझे पता चला कि उनके पास भी कुछ कॉइन है तो मैं जाके उनसे एक्सचेंज कर देता हूँ और मेरा कॉइन्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ाता गया। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे इंडिया के अंदर करेंसी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 2.5 रुपए की, 2 रुपीज 8 अंक की करेंसी नोट थी।
अच्छा,
वो भी है मेरे पास। हाँ जी, वो भी मेरे पास है।
ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको ऐसी एंटीक चीज कलेक्ट करने का शौक है, और सिर्फ शौक ही नहीं, आप उसमें अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और आप एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, तो आप अपने पेशन को और ये अपने बिजनेस को किस तरह से मेंटेन करते हैं, दोनों चीजों को किस तरह से टाइम देते हैं आप, वो हम जानना चाहते हैं।
देखिए, ये पैशन जो होता है ना वो स्ट्रेस बस्टर होता है। जब बिजनेस में ऐसे बहुत थकावट होती है तो हम बैठ के टीवी देखते रहते हैं या फिर गपशप लगाते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, वो मेरा मैं टीवी कभी देखता नहीं हूँ। आई डोंट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आई डोंट इन्वॉल्व इन टीवी, आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, दैट इज माई पैशन। अगर मैं यहाँ से शाम को घर गया, शाम को अगर मैं और मेरे वाइफ बैठते हैं, बातचीत होती है, लेकिन उस दौरान भी हम लोग ऐसा होता है तब मैं पढ़ता रहता हूँ या फिर मैं अपने कैमरा से खेलता रहता हूँ, तो दैट इज द वे आई हैव केप्ट मायसेल्फ बिजी विद कैमरास एंड एवरीथिंग।
अच्छा, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि आप बिजनेस के साथ साथ इसमें भी आप अपना टाइम निकालते हैं। और एज अ बिजनेस आइकॉन अवार्ड विनर, आपने एक इंस्पिरेशन आइकन अवार्ड विनर भी आप रह चुके हैं, तो हम आपके बिजनेस इनोवेशंस को भी जानना चाहते हैं कि वो क्या है आपके बिजनेस इनोवेशंस, वो भी आप बता दीजिए।
देखिए, एक दौरान था, एक लाइफ में एक फेज आया था जब आदमी का साइकिल घूमता रहता है, मैं एक अच्छा बिजनेस कर गया था और ऑल ऑफ अ सडन मेरा बिजनेस क्रैश हो गया। देर वॉज नथिंग,
ओ
आई वॉज लिटरली मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं था। तो वो ऐसा फेस था कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो वो कुछ कमाल कर देता है। तो उस वक्त मैं सर्च कर रहा था कि क्या किया जाए, और फॉर्चुनेटली
अच्छा
आई वॉज वेरी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई हैड अ वेरी ग्रेट बैकिंग ऑफ माई पेरेंट्स, माई वाइफ एंड एज वेल माई इन लॉज। तो उन लोग का मुझे बहुत ही
अच्छा
बढ़िया सपोर्ट रहता था। तो मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया और मेरे डैडी से बताया कि भाई मुझे ऐसा केमिकल है, ये केमिकल है और उसमें वाटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ही वॉज अ बिग बिजनेसमैन, मेरे डैडी भी, उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि माई फादर इन लॉ वॉज अ सिविल, इसे सिविल इंजीनियर अभी भी है मेरे फादर इन लॉ। उनसे बात करी कि भाई ये प्रोडक्ट है, तो उन्होंने बोला कि वाटर प्रूफिंग इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू गो अहेड। और बस उसमें इनोवेशन करता गया और आज उस एक प्रोडक्ट मैंने शुरुआत करी थी, आज 128 प्रोडक्ट अलग अलग मैं फाउंड करके बैठा हूँ जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एंटी कोरोसिव कोटिंग है, फिर फ्लोरिंग के कुछ, इस तरह से मेरा काम आगे बढ़ता गया।
अच्छा, तो ये तो एक बिजनेस में इनोवेशन करना, और जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता उस टाइम में अगर आप इनोवेशन करते हो, क्योंकि तो वो तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऑथर भी हैं, आप कई सारे राइटिंग आप लिख चुके हैं, तो इसमें आप किस जेनर में लिखना पसंद करते हैं? कौन सी जेनर है जिसमें आप लिखना ज्यादा पसंद करते हैं?
कुछ भी, एनीथिंग, यू जस्ट गिव मी वन टॉपिक, आई विल स्टार्ट राइटिंग इट। मुझे उस कोई वो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि मैं रोमांटिक करूंगा या थ्रिलर करूंगा, या यू जस्ट गिव मी सम टॉपिक। अगर आप, मैंने G20 जो हमारा जो ये हुआ था सबमिट, उसमें भी मैंने मेरा वो है, मेरा आर्टिकल रहा था। उसके अलावा अभी रिसेंटली वुमेन्स डे गया था, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था।
अच्छा,
तो
क्या बात है।
हाँ जी, और तो इस तरह से फिर पेट्रोटिज्म के बारे में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, क्योंकि हमारे देश में यह बीच में चला था कि बस झंडे लगाओ सर और वो पेट्रोटिज्म हो गया। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पेट्रोटिज्म के अंदर सिर्फ झंडा लगाना ही नहीं होता है। पेट्रोटिज्म रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, टैक्स सही पे करो, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। वो मैंने पूरा उसके अंदर डाला था, उसके ऊपर फोकस डाला था, ये सारी चीज इट काउंट्स इन पेट्रोटिज्म। अगर आप घर के ऊपर झंडा लगा के फिर गलत काम करोगे, टैक्स नहीं भरोगे, ट्रैफिक साइंस नहीं रखोगे, तो कोई मतलब ही नहीं। दिस वॉज माई एक्चुअली
बिल्कुल
दैट वॉज माई आर्टिकल अबाउट, और उसको भी काफी सराहा गया था।
अच्छा, हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि G20 समिट में आर्टिकल आ गया तो वो तो एक बड़ी बात है। और आप जो एक पेट्रोलिज्म के ऊपर, जो देशभक्ति के ऊपर आपने जो बात की, बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ झंडा हाथ में लेकर चलना कुछ देशभक्ति नहीं है, उसके हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारी अथॉरिटी होती है वो कुछ है।
बिल्कुल,
हाँ जी,
एल्डरली लोगों
तो
को
वो
हेल्प,
आप
सब तरह का काम हम करते हैं। हमारे मेरे मेरे स्कूल के टीचर्स जो आज काफी है, उनको उनके साथ में मैं बातचीत करता रहता हूँ हमेशा। तो दीज आर द थिंग्स
अच्छा, तो एक आप, मेरे मन में एक अभी ख्याल आ रहा है कि आप क्या, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रही है अभी, तो क्या आप इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखते हैं कि कुछ बदलाव लाना चाहिए? जैसे थोड़े थोड़े बदलाव तो आ रहे हैं कि भगवत गीता सिखाई जा रही है, या फिर अलग अलग कुछ कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है, तो क्या आप हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं कि कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, और बदलाव लाने की जरूरत है तो कहाँ पे?
देखिए, बचपन से किसी को क्या जिसमें फील्ड में रुचि है उसके अंदर वो अगर ध्यान दे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं एज ए मुझे फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर
बिल्कुल
मुझे मैथ्स अच्छा लग ही नहीं रहा है तो व्हाई शुड आई स्टडी मैथ्स।
बिल्कुल
तो ये एक चीज, और उतना टाइम वो अगर फिजिक्स में ही मैं देता हूँ तो इट मेक्स मी अ बेटर फिजिशियन देन, ज्यादा उसमें हासिल कर पाऊंगा। और केमिकल वगैरह मैं क्यों पढ़ूंगा अगर वो उसमें मेरा बिना मतलब का फिजूल का वर्क जा रहा है। दैट इज
बिल्कुल यही है।
भगवत गीता और सारी चीजें जो है वो तो बाय डिफॉल्ट हर इंसान सीखता ही सीखता है और सीखना भी, लेकिन स्कूलिंग्स एंड कॉलेज के अंदर जिस तरह से हमारा एजुकेशन होना चाहिए वो इंसान अपने आप पे तय करेगा कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ और उसी के ऊपर फोकस करना। बेल्ट के अंदर इंसान इतना मेहनत करता है, पागलों की तरह पढ़ता है, बहुत ही मेहनत करता है, बट एंड रिजल्ट कम क्यों आता है, क्योंकि उसको कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं है और उसको पढ़ाया जाता है।
बिल्कुल हाँ, यही एक मेन बात है कि हमें जो अच्छा लगता है उसी के पीछे नहीं, सब चीजों के पीछे हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें भगा रही है, तो वो एक थोड़ी ऐसी बात है। आपने बहुत ही अच्छी बात की और अच्छे पॉइंट के ऊपर आपने वो हमारा ध्यान आपने हमें किया है कि आप ये करें, क्योंकि अगर हमें जो अच्छा ही नहीं लगता अगर हम वो पढ़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते और स्ट्रेस भी ज्यादा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो और सारी चीजें पढ़ने के बाद रिजल्ट तो जीरो ही है। तो वो एक पेरेंट्स को टीचर्स को भी समझना चाहिए कि इसको किस में रुचि है, तो ये एक अच्छी बात है आपकी।
हमने कॉस थीटा, साइन थीटा सब कुछ पढ़ा हुआ है, आज हमारी जिंदगी में क्या।
बिल्कुल बिल्कुल ही आपकी सही बात है कि ये एक पॉइंट के ऊपर ध्यान हमें रखना होगा, हमें स्टूडेंट्स को अपने चाइल्ड को भी इतना प्रेशर नहीं डालना होगा उसके ऊपर कि इसमें क्यों कम मार्क्स आए, तो मेरे ख्याल से ये हम कर सकते हैं क्या। तो अगर हम फोटोग्राफी की तरफ फिर से चले तो फोटोग्राफी की के ऊपर क्या आप कुछ मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि फोटोग्राफी के जरिए भी हम मैसेज दे सकते हैं लोगों को, क्या आप इस तरीके को मानते हैं?
फोटोग्राफी से मैसेज तो कुछ नहीं जाते, इट्स एन आर्ट, ये आर्ट है, उसके अंदर क्या बेहतर चीज निकाल सकते हो उससे मैसेज तो यही कर सकते हैं कि इट्स एक तरह की आपकी यादें हैं जो आप आज फोटो ले होंगे, और हर इंसान अपनी आंख से अलग अलग चीजें देखता है, एक ही खड़े होके अगर हम दो, मैं और मेरे वाइफ साथ में खड़े हैं तो हम दोनों चीजें जो देखेंगे वो अलग तरीके से देखेंगे, तो अगर मैं मेरे कैन बी एबल टू वॉच व्हाट आई हैड सीन, दोनों का एंगल, तो जो मैं पिक्चर लूंगा वो देख सकते हैं या और कोई भी।
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक एंगल की बात होती है कि हम क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग देख सकते हैं इसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी कुछ सोलो बुक भी आने वाली है राइटिंग में, तो वो किस टॉपिक,
हाउ टू बिकम अ गुड फोटोग्राफर, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी।
अच्छा, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत ग्रेट विशेस हमारी तरफ से कि वो बुक जल्दी ही कंप्लीट होके हमें पढ़ने को मिले, और आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, इंटरव्यू आपका लेके बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये सब
बहुत ही
इंटरव्यू के दौरान,
आपने काफी अच्छे सवाल भी करे, really it was, I had a good time, thank you very much.
करेंगे ना जो आपको क्लोज का बटन आपको दिख रहा है तो वहीं से सेव हो जाएगा। ओके तो फिर हाँ, तो हम आपसे विदा लेंगे, तो चलिए आपके लिए ढेर सारी विशेष कि आप अपने प्रोफेशन में और आप अपने पेशन की तरफ और आगे बढ़े और फिर आगे बढ़ते ही रहे, तो वो ग्रेट विशेष की तरफ हम ये चलो।
तो ये था साहिर बाजोला जी के साथ हमारा इंटरव्यू, तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू आप हमें बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है PAYL_PULSE पे, आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हैं, आप अपने रील्स में डाल सकते हैं और पोस्ट भी डाल सकते हैं और अपने मोटिवेट कर सकते हैं हमें और साहिब जी बाजू वाला जी को, क्योंकि मोटिवेशन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, तो मोटिवेशन जरूरी है अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। और ये जो इंटरव्यू का फुल वीडियो अगर आपको देखना है तो ये साहिब जी के अकाउंट पे है, उनका अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है शाहिर बाजू वाला, तो आप वहाँ पे भी जाके वो देख सकते हैं पूरा इंटरव्यू। जल्द ही मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी वो वीडियो डाल दूंगी। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे यूं ही मिलते रहेंगे और आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे, आपको कंपटीशन की कुछ कविताएं या फिर स्टोरीज सुनाते रहेंगे या फिर कुछ मोटिवेशनल थॉट्स आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए अब जाने का टाइम हो गया है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, शायनारा, शुभ, खैर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।